ओम शांति। ये सत्य है कि हमारे संबंधी, हमारे परिजन, हमारे मित्र, हमारे आस पड़ोस में परिवेश में रहने वाले व्यक्ति कई बार बहुत दुखी उठा रहे होते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं होती हैं। हम एक सीमा तक ही उनकी हेल्प कर पाते हैं, और जहां तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है, शारीरिक बीमारी की बात आती है, हम वहां पर अपने को लाचार अनुभव करते हैं। या कई बार हम किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हैं, वो गलत रास्ते पर है, लेकिन हम उसको नहीं समझा पाते। हमको पता है कि वो गलत रास्ते पर है, उसमें उसका जीवन नष्ट हो रहा है। हम अनेक प्रयास करने के बावजूद भी विफल हो जाते हैं। इस बात से आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अपनी स्वयं की अलग है। एक स्थान ऐसा होता है, एक मोड़ ऐसा है जीवन का कि जहां पर आकर के हर व्यक्ति अकेला होता है। आया अकेला, उसके कर्म जो किए वो उसने स्वतंत्र रूप से अकेले किए, मनमानी की, उसके बाद जाएगा भी अकेला, लेकिन साथ साथ उसने जो कर्म किए इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से किए, उसका कर्म फल भी उसको इंडिविजुअल ही भोगना है। क्योंकि ये खेल ऐसा बना हुआ है कि इसमें संबंधी होते हैं, हमारे परिवेश में सभी मिलकर के इस खेल को खेलते हैं, तो हम जुड़ भी जाते हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। निश्चित ही हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहां पर जब लाचारी की अवस्था आए, तो आपको यही समझना होगा, और ये सत्य है कि जिसने जो कर्म किया है, उसका फल उसको अवश्य स्वयं ही भोगना पड़ता है। और मन के द्वारा अगर किसी को दुख देते हैं, तो मानसिक दुख, मानसिक प्रताड़ना मिलती है। शारीरिक रूप से अगर हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो शारीरिक रूप में कष्ट आते हैं, और अगर हम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो आर्थिक रूप में आते हैं। इस प्रकार हम जैसे जिस विधि से लोगों को साथ व्यवहार करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उसी रूप में हमारे सामने उनका अच्छा या बुरा परिणाम अवश्य आता है। हम ये मान लें कि आज हमने एक पाप कर्म किया और 100 अच्छे कर्म किए, तो ये कदापि हमें नहीं सोचना चाहिए कि उस एक बुरे कर्म का फल खत्म हो गया। वो आपको एक कर्म का इंडिविजुअल फल भोगना पड़ेगा, और जो आपने 100 अच्छे कर्म किए हैं, उन 100 कर्म का भी आपको फल अवश्य ही मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ कर्मा है कि हम जो भी क्रिएट करते हैं, वैसा ही उसी रूप में हमारे परिणाम आते हैं। आज संसार में जो भी दुख देखने को मिल रहा है, शारीरिक कष्ट जो मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अवज्ञाएं हैं। हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश बहुत दुख दिया है, स्वयं भी दुखी हुए हैं और अन्य को भी दुख दिया है, तो उसका परिणाम ही दुख के रूप में आ रहा है। तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कर लें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा है। आज मान लीजिए मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं और उसका फल मुझे अच्छा मिलता है, तो मैं कहते नहीं थकता कि ये मेरा ही किया हुआ है। मेरे पड़ोसी, मेरे परिवेश वाले, मेरे परिवार वाले भी यही कहते हैं कि इन्होंने अच्छा किया, इसलिए इनको अच्छा मिला। उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब बुरा आता है, तो ये मान लें, ये जान लें, ये स्वीकार कर लें कि वो मेरा ही है, वो इंडिविजुअल उस व्यक्ति का ही है, किसी दूसरे का नहीं है। हम इसमें यह हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने मन के भावनाओं के द्वारा उनको प्यार दें, रिगार्ड दें। यह बहुत बड़ी हीलिंग होती है। कोई व्यक्ति अगर दुख में है, हम उसके दुख को, शरीर के कष्ट को अगर कम करना चाहते हैं तो हम उसके प्रति अच्छा सोचें। फिजिकल लेवल पे तो एक लिमिट होती है, धन की आप एक लिमिट में हेल्प कर सकते हैं, शारीरिक हेल्प आप एक लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन मनसा में कोई लिमिट नहीं है। आपका मन उनके प्रति स्नेह क्रिएट करे। कभी कोई व्यक्ति अगर दुखी है, बीमार है, तो कभी उससे उसके दुख के बारे में उसके पास दुख प्रकट ना करें। यह सबसे बड़ी हीलिंग है उस व्यक्ति के लिए। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि हम उस व्यक्ति के पास खड़े होकर इस प्रकार की नेगेटिव दुख की भावनाएं, दुख की किरणें वहां पर प्रवाहित करते हैं और उसको अधिक दुख पहुंचाते हैं। तो अगर हम उनके सही मददगार बनना चाहें तो उसका सही विधि यह है कि हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, अपने मन को स्ट्रांग रखें, उनको दुख क्रिएट ना होने दें, बल्कि उनका दुख अगर क्रिएट हो तो उनको प्यार से समझा दें कि कोई बात नहीं, वेलकम करो इसका और ये भी चला जाएगा, इट शैल बी पास, ये समय एक जैसा नहीं रहेगा। और इस प्रकार उनके प्रति अगर आपने ध्यान ज्ञान योग सीखा है तो परमात्मा किरणों के नीचे उनको बिठा दें। चाहे वो किसी भी पेन से गुजर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से कोई पेन है या कोई उनके सामने प्रॉब्लम है, तो उस आत्मा को परमात्मा की छत्र छाया में बिठा दें, उनके शक्तियों की किरणों की शावर के नीचे उनको बिठा दें और ये अनुभव करें। उस आत्मा को भी इस बात के लिए इंस्पायर करें और वे सब, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, अपने को समर्पित करें परमात्मा के प्रति। या हमारे जो परिवार में हैं, मेरा पति है, बच्चे हैं, या कोई भी है जो हमारे लगे सगे हैं, उन सबको हम, जिनका हित चाहते हैं, उनको ट्रस्टी बन के संभालें। ट्रस्टी माना कि ये मेरा नहीं, ये परमात्मा के हैं, और एक्चुअली है ही हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान। और ट्रस्टी बन करके कि मैं तो इनके लालन पालन, इनकी देखभाल के लिए, इनके भले के लिए निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं मैं। जो ट्रस्टी होता है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को खुद संभाल रहा होता है और उसके मन में ये भाव होता है कि ये मेरा नहीं, ये फलाने सेठ जी का है, ये प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन मैं इसको मैनेज कर रही हूं या मैनेज कर रहा हूं। इस प्रकार की भावना हमको बहुत हल्का करती है। और जीवन का लक्ष्य ही यह है, गुणों के साथ जीना और लोगों को सुख देना और सुख ही लेना। इस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे से जिएं। और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। ओम शांति।